इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 32। सेनहेरीब द्वारा यरूशलेम पर धमकी। पूरी विश्वास योग्यता में हुए इन कामों के पूरा होने पर अश्शूर के राजा सेनहेरीब ने यहूदिया पर हमला कर दिया और उसने गढ़ नगरों को घेर लिया। उसकी योजना इन्हें अपने अधिकार में ले लेने की थी। जब हिजकिया ने यह देखा कि सेनहेरीब निकट आ गया है और उसका लक्ष्य यरूशलेम पर हमला करने का है, अपने अधिकारियों और योद्धाओं के साथ उसने योजना की कि नगर के बाहर के झरनों से जल की आपूर्ति काट दी जाए। इसमें उन्होंने उसकी सहायता की। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने वे सारे झरने और जल के सोते बंद कर दिए जो उस क्षेत्र से बह रहे थे। उनका विचार था, भला क्यों अश्शूर के राजा यहां आकर भारी जल प्राप्त करें। तब हिजकिया ने बड़े साहस के साथ सारी टूटी पड़ी शहरपना को दोबारा बनवाया, इन पर पहरेदारों की मचानों को बनवाया। इसके अलावा उसने एक और बाहरी शहरपना को बनवाया। दाविद के नगर में उसने छतों को मजबूत किया। तब उसने बड़ी मात्रा में हथियारों और ढालों को बनवाया। उसने लोगों के ऊपर सैन्य अधिकारी रख दिए और उन्हें नगर द्वार के चौक पर इकट्ठा कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, मजबूत और साहसी बनो, अश्शूर के राजा के कारण ना तो भयभीत हो और ना ही कमजोर बनो और ना ही उनका विचार करो जो बड़ी सेना उसके साथ आई हुई है, क्योंकि वह जो हमारे साथ है उससे महान है जो उसके साथ है। उसके साथ तो सिर्फ मानवीय हार्ड मास का हाथ है, किंतु हमारे साथ है हमारी सहायता के लिए यहावे हमारे परमेश्वर, कि वह हमारे युद्ध लड़े। प्रजा ने यहूदिया के राजा हिजकिया की बातों का विश्वास किया। कुछ समय बाद अश्शूर के राजा सेनहेरीब ने यरूशलेम को अपने दूत भेजे। इस समय वह अपनी सारी सेनाओं के साथ लाकीश नगर पर घेरा डाले हुए था। उसका संदेश यहूदिया के राजा हिजकिया और यरूशलेम में पड़ाव डाली हुई यहूदिया की सेना के लिए यह था। अश्शूर के राजा सेनहेरीब का संदेश यह है, ऐसा क्या है जिस पर तुम भरोसा किए हुए यरूशलेम के घिरे हुए होने पर भी बैठे हो? क्या यह सच नहीं है कि हिजकिया तुम सभी को यह कहते छलावे में रखे हुए है, यहावे हमारे परमेश्वर ही हमें अश्शूर के राजा से छुटकारा दिलाएंगे कि वह तुम्हें भूख और प्यास की मृत्यु को सौंप दे? क्या यह वही हिजकिया नहीं है जिसने ऊंचे स्थानों की वेदियों को गिराते हुए यहूदिया और यरूशलेम को कहा था, वेदी एक ही है, तुम्हें जिसके सामने आराधना करना और धूप जलाना है? क्या तुम जानते नहीं कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने दूसरे देशों के लोगों के साथ क्या क्या किया है? क्या किसी भी देश के देवताओं में यह क्षमता थी कि उन्हें मेरी शक्ति से सुरक्षित रख सके? मेरे पूर्वजों द्वारा नाश किए गए राष्ट्रों के उन सभी देवताओं में ऐसा कौन था जो उन्हें मुझसे सुरक्षा प्रदान करेगा? अब हिजकिया ना तो तुमसे छल कर सके और ना तुम्हें इस तरह भटकाए। तुम उसका विश्वास ही मत करो, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का कोई भी देवता अपनी प्रजा को ना तो मुझसे और ना मेरे पूर्वजों से बचा सका है। तो फिर कैसे हो सकता है कि तुम्हारा परमेश्वर मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कर सके? उसके दूत यहावे परमेश्वर और उनके सेवक हिजकिया के विरुद्ध बातें करते रहे। सेनहेरीब ने यहावे इज़राइल के परमेश्वर के प्रति अपमानजनक पत्र भी भेजे। इनमें उसने यह लिखा था, जैसा विभिन्न देशों के देवता उन्हें मुझसे सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं, वैसे ही हिजकिया का परमेश्वर भी उसके लोगों को मुझसे सुरक्षा देने में असफल रहेगा। उन्होंने यह संदेश ऊंची आवाज में यरूशलेम के उन लोगों को जो इस समय शहरपनाह पर यह सब सुन रहे थे, यहूदिया वासियों ही की भाषा में पढ़ सुनाया कि वे इसके द्वारा उन्हें भयभीत और निराश कर दें और वे नगर पर अधिकार कर लें। उन्होंने यह कहते हुए यरूशलेम के परमेश्वर को पृथ्वी के दूसरे राष्ट्रों के देवताओं के बराबर रख दिया था, जो देवता स्वयं उन्हीं के हाथों की रचना थे। राजा हिजकिया और आमोज के पुत्र भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इस विषय पर प्रार्थना की और स्वर्ग की दुहाई दी। तब यहावे ने एक ऐसा स्वर्गदूत भेजा जिसने अश्शूर राजा की छावनी में जाकर हर एक वीर योद्धा, प्रधान और अधिकारी को मार दिया। तब सेनहेरीब घोर लज्जा में अपने देश को लौट गया। वहां पहुंचकर जब अपनी देवता के मंदिर में गया, उसी के कुछ पुत्रों ने उसे तलवार से घात कर दिया। इस प्रकार यहावे ने हिजकिया और यरूशलेम निवासियों को अश्शूर के राजा सेनहेरीब और अन्यों के वार से सुरक्षा प्रदान की और उन्हें चारों ओर से सुरक्षा दी। अनेक अनेक यहावे के लिए भेंटे लेकर यरूशलेम आने लगे। वे यहूदिया के राजा हिजकिया के लिए उत्तम भेंटे ला रहे थे। इससे इसके बाद सभी राष्ट्रों की दृष्टि में हिजकिया की प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ती चली गई। हिजकिया का घमंड, विजय और मृत्यु। कुछ समय बाद हिजकिया घातक रोग से बीमार हो गया। उसने यहावे से विनती की और यहावे ने उससे बातें करते हुए उसे चिन्ह दिया, मगर घमंड में हिजकिया ने इस उपकार का कोई बदला ना दिया। उसका मन फूल चुका था, इसलिए उस पर और यहूदिया और यरूशलेम पर यहावे का क्रोध टूट पड़ा। तब हिजकिया ने अपने हृदय को नम्र किया। उसने और यरूशलेम वासियों ने फल स्वरूप यहावे का प्रकोप हिजकिया के जीवन काल में हावी ना हुआ। हिजकिया अब बहुत धनी और प्रतिष्ठित हो चुका था। उसने अपने लिए चांदी, सोने, रत्नों, मसालों, ढालों और सभी प्रकार की कीमती सामग्री के रखने के लिए भंडार बनवाए। उसने अनाज, अंगूर के रस और तेल रखने के लिए भंडार घर बनाए और पशुओं और भेड़ों के लिए पशुशालाएं और भेड़शालाएं बनवाई। उसने अपने लिए नगर बनवाए और पशु और भेड़े बड़ी संख्या में इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ही ने उसे यह बड़ी संपन्नता दी थी। यह हिजकिया ही का काम था जो उसने गिहोन नदी के ऊपर के सोते को बंद कर बहाव को दाविद के नगर के पश्चिमी ओर मोड़ दिया था। हिजकिया जिस किसी काम को शुरू करता था उसमें वह सफल होता था। बाबेल के शासकों के राजदूत उससे उसके अद्भुत कामों के बारे में जानने के लिए भेजे गए थे। परमेश्वर ने उसे अकेला इसलिए छोड़ दिया था कि वह उसको परखे कि वह पहचान जाए कि हिजकिया के हृदय में हकीकत में है क्या। हिजकिया द्वारा किए गए बाकी कामों का और उसके श्रद्धा के कामों का वर्णन आमोज के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता के दर्शन और राजा नामक पुस्तक में किया गया है। हिजकिया हमेशा के लिए अपने पूर्वजों से जा मिला। उन्होंने उसके शव को दाविद के पुत्रों की कब्रों के ऊंचे भाग में रख दिया। उसकी मृत्यु के अवसर पर सारे यहूदिया और यरूशलेम वासियों ने उसे सम्मानित किया। उसके स्थान पर उसका पुत्र मनश्शे राजा हो गया।